सोच विचार के साथ। मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
वेलकम टू सोच विचार। आज हम कोशिश करेंगे, ये जो पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी का हायटस, एक उतार चढ़ाव, एक निज़ाम बना हुआ है जो हम कुछ एक कदम आके लेते हैं, दो कदम पीछे चले जाते हैं, ये क्या चीज़ है। मीडिया पे तो रोज़ इसके मुतालिक हम बातें सुनते रहते हैं, अपने लेफ्ट राइट नून पीटीआई ये वो, पर वो तो एक किस्म का मेरा ख्याल नॉइज़ है। जो हमें चाहिए इसके अंदर डीप डाइव और हमें समझने की कोशिश करनी है कि ये क्यों हो रहा है। तो इसके लिए मैंने कोशिश की है, एक पाकिस्तान के बड़े अच्छे मुफक्कर हैं, माशाल्लाह पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क इन वेरियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान, ही हैज़ रिटन अ लॉट, राइट्स अ लॉट इन न्यूज़पेपर्स, रिटन अदरवाइज अ लॉट, अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड एनालिस्ट, द नेम इज़ ज़ैगम खान। ज़ैगम खान साहब वेलकम।
बहुत शुक्रिया सर।
खान साहब, मैं आपकी बड़ी ये राइटिंग्स पढ़ता रहता हूँ और बड़ा मुतासर होता हूँ और बड़ा मैंने आपको कोशिश किया समझने की, तो इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया। मैंने कहा हमारी ऑडियंस को समझाएं कि ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। रोज़ाना हम देखते हैं कभी एक इदारा दूसरे से लड़ता है, कभी एक लीडर दूसरे से लड़ता है, कभी सेनेट की इलेक्शन रिग हो जाती है, कुछ कहते हैं पैसा चल रहा है या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं। तो इसको ज़रा अगर हम अच्छे तरीके से एनालाइज करें, ये टीवी की तरह नहीं, तो ये क्या आप क्या देखते हैं, क्या हो रहा है?
मेरे ख्याल अगर हम इसकी थोड़ी सोशियो पॉलिटिक्स देखें कि किस तरह सोशियोलॉजिकली और पॉलिटिकली पाकिस्तान का ये इस तरह का इस वक्त का कल्चर इवॉल्व हुआ है और मैं किस तरह इसमें अदारे अपना एक हिस्सा डाल रहे हैं और किस तरीके से एक्टर्स उसमें प्ले करते हैं, तो शायद हम इसको बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान के बनने के वक्त चले जाएं, तो हमें एक चीज़ बहुत वाज तौर पर नज़र आती है कि पाकिस्तान की सिविल सर्विस एक मजबूत सिविल सर्विस थी, फ़ौज एक मजबूत फ़ौज थी, और उस वक्त भी जो पाकिस्तान का एक जमहूरी इदारे थे, इलेक्टेड भी और पार्टियां भी, वो इन दो के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर थे। फिर पाकिस्तान के जो दो विंग्स थे यानी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान, उसके दरमियान में जो अदम एतमाद की फ़जा थी और ख़ास तौर पे जो ताकत का महवर मगरबी पाकिस्तान में होना था, जहां अक्सरियत की बजाय मुकाबलतन मशरकी पाकिस्तान के मुकाबले में अकलियती विंग था, जिस वजह से जो इस वक्त का पाकिस्तान है उसमें जमहूरियत के बारे में ही शकूक व शुभात थे, तो उसके नतीजे में जो पहले 10 साल हैं पाकिस्तान के यानी 1947 से लेकर 1957 के अयूब खान के मिलिट्री टेक ओवर तक, उसको हम कह सकते हैं कि जिसमें पाकिस्तान की सिविल सर्विस ने डोमिनेट किया और रफ्ता रफ्ता जो पाकिस्तान का मुंतखब निज़ाम था वो उनके मातहत चला गया और फिर एक हद तक उनके हाथ में चला गया। हमने देखा कि गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली बोगरा, सिकंदर मिर्ज़ा, जो सिविल सर्विस के लोग थे, वो बाकायदा एक जमहूरी सिस्टम का हिस्सा बनकर हुक्मरान भी बन गए और जमहूरियत उस तरह तरक्की नहीं कर सकी, जिसमें स्ट्रक्चर का भी कसूर है। फिर साथ साथ आप ये देखिए कि खुद जो उस वक्त के इलेक्टेड पॉलिटिशियन थे और पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनका भी एक बड़ी हद तक कसूर है। फिर अयूब खान साहब आ गए, उनका मिलिट्री टेक ओवर आ गया और उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज पाकिस्तान की और मिलिट्री ये मिलकर डोमिनेट करने लगी पाकिस्तान पर, और बाकायदा जो हमारी सियासत थी और सियासी निज़ाम था और पार्टियां थी, वो एक बाकायदा दबाव का शिकार हुई और उनको एक एक पूरी कोशिश के तहत उनको कमज़ोर बनाया गया और जमहूरी निज़ाम को एक लिहाज से जड़ से उखाड़ के फेंकने की कोशिश की गई। और फिर 1962 से लेकर आप देखते हैं 67 तक, फिर आप देखते हैं कि अयूब खान ने एक अपना बुनियादी जमहूरियत का एक निज़ाम लाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में एक तनाव भी बढ़ गया मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में। और फिर 1970 के बाद पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ तरह का दौर शुरू हुआ, जब पाकिस्तान टूट भी गया और पाकिस्तान की पहली एक जमहूरी हुकूमत आई जो परफेक्ट नहीं थी, और वहाँ से एक टेंशन पाकिस्तान के سول اور ملٹری نظام میں ایک طرف سے پاکستان کے سویلین منتخب ادارے اور دوسری طرف پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہہ لیں جس میں آپ کی سول سروسز اور ملٹری شامل تھی ان کے درمیان میں تناؤ آیا اور ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے کچھ معاملے یہ بھی آئے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے سول سروس کو دباؤ میں ڈالنے کی اور اس کو کمزور کرنے کی بھی کوشش کی. اب اس کے بعد کا جو دور ہے اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب 1990 کی دہائی کے اینڈ تک اگر ہم آئیں اور جو آپ کو پتہ ہے اس درمیان میں دو ہمارے پاس ملٹری ڈکٹیٹرشپس بھی رہی اور دو ادوار جمہوریت کے بھی آئے, پہلے بھٹو صاحب کا اور 90 کی دہائی میں, اس میں جب بھی ایک پارٹی آتی تھی تو وہ کوشش کرتی تھی کہ وہ ایک ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ لانے کی کوشش کرے, یعنی ویسا ہی نظام جیسا مارشل لا میں ہوتا تھا, ایک طرح کا اتھاریٹیرین, اور جو جمہوری کلچر ہے, جو جمہوری نارمز ہیں, جو سیاسی جماعتوں کا مضبوط ہونا ہے وہ نہیں ہو سکا. اور جیسے ہی ملٹری آتی تھی حکومت میں تو ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ سیاستدانوں کو کوآپٹ کیا جائے, ان کو نیچے لگایا جائے, جمہوریت کو کنٹرول کیا جائے, سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا جائے. تو وہی ہیریٹیج آگے چلتا آیا ہے. ہمیں کچھ ایک بہت پازیٹیو اثرات نظر آئے جو 2008 سے 2013 کا دور تھا, جس میں آپ میں جمہوریت کا کچھ نارم سیٹ ہوتے نظر آئے. یعنی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جمہوریت صرف ایک الیکشن کا نام نہیں ہے اور جمہوریت صرف قواعد و ضوابط کا نام بھی نہیں ہے, جمہوریت اس کے ساتھ ساتھ نارمز کا نام بھی ہے, اور جمہوریت ایک اتفاق رائے کا, ایک ڈیموکریٹک کنسنسس کا بھی نام ہے. اگرچہ پاکستان میں ہمارے جو 1973 کا آئین ہے اس نے قواعد و ضوابط, قوانین اور ایک نظام تو بنا دیا, لیکن اس کے بعد ہماری سیاسی جماعتوں نے جو ایک ڈیموکریٹک کنسنسس ڈیولپ کرنا تھا اور جو نارم سیٹ کرنی تھی وہ نہیں ہوئی, اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک پاکستان کی دو بڑی جماعتوں نے, یعنی پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے, نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن نہیں کیا. تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک آرگنائزڈ کوشش تھی, ایک باقاعدہ کوشش تھی کہ جمہوری جو نارمز ہیں ان کو سیٹ کیا جائیں, اور اس نارمز کے نتیجے میں ہمیں کافی ساری ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ نظر آئی 2008 سے 2013 کے درمیان میں, جب لیجسلیشن بھی شاید 1970 والی ذوالفقار علی بھٹو کی اسمبلی تھی, شاید اس سے بھی زیادہ لیجسلیشن ہوئی, ایک افیکٹو اسمبلی تھی, 18ویں ترمیم ہوئی جس میں فیڈریشن کے بہت سے مسئلے حل ہوئے, لیکن 2013 کے بعد سے انفارچونیٹلی ہمیں بہت جمہوریت پیچھے کو لپٹتی ہوئی نظر آئی ہے, ایک ڈیموکریٹک ریسیشن اور ڈیموکریٹک ڈیکے نظر آیا ہے. تو اگر آج کے دن میں میں آؤں اور اس وقت آپ اگر دیکھیں جو کچھ سینٹ کے الیکشنز میں ہوا ہے تو آپ کو نظر آیا کہ پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک ڈیکے ہو رہا ہے. جو تھوڑی بہت ہم نے جمہوری طور پر کامیابیاں حاصل کی تھیں اس سے ہم پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ منظرنامہ ہے جو میں دیکھتا ہوں.
ویری انٹرسٹنگ. دیکھیے زیغم صاحب, آپ نے بہت ساری, آئی تھنک اٹس اے ویری سکسنکٹ اور بہت اچھی ہسٹری آف پاکستان آپ نے بتا دی اور بڑی انالیٹیکل طریقے سے بتا دی ہے. ذرا سا میں جاؤں پیچھے. آپ نے شروع کیا جو تھیسس آپ کا تھا کہ ہماری ملٹری بیوروکریٹک کمپلیکس پاورفل تھا, وہ حمزہ علوی کا جو تھیسس تھا وہ آپ نے اس کو پیش کیا اور آپ نے کہا کہ
جی
بالکل. اب وہ اس میں مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ بالکل مان جاتا ہوں اس وقت تھا, اور اس کے بعد ملٹری بیوروکریٹک کمپلیکس نے کچھ سال رول کیا, پر اس کے اندر کچھ باتیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ ملٹری بیوروکریٹک کمپلیکس کو انریول کرنے کی کوشش کی بھٹو صاحب نے, تو بھٹو صاحب نے چوز کیا کہ میں نے جو بیوروکریسی ہے اس کو اپنے نیچے لگانا ہے, اس کو اپنا غلام بنا لینا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے پاس موقع آیا تھا ملٹری کو بھی چینج کرنے کا, پر انہوں نے اس کو چینج نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہی رن کروں گا. کچھ دیر وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی رہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب وہ کانسٹیٹیوشن لے کے آئے تو انہوں نے پھر ایز یو سیڈ ون پارٹی رول بنانے کی کوشش کی. اور آج تک جو ہمارے حکمران ہیں, پولیٹیشنس ہیں, ان کو صرف ایک ہی ضد رہتی ہے کہ جی میں ڈکٹیٹر بن جاؤں, اپنی مرضی کروں, جو مرضی کروں, ٹھیک ہے نا جی. اور بیوروکریسی کو دونوں ڈکٹیٹرز بھی, اور پولیٹیکل ڈکٹیٹرز بھی اور ملٹری ڈکٹیٹرز بھی, بیوروکریسی کو یوز کرتے ہیں اپنے اپنی رول کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے.
بالکل درست.
اس ملک میں کوئی مفکر نہرو جیسا, या अम्बेडकर जैसा या जो भी इंडिया में बहुत सारे मुफक्कर थे, बिकॉज देखा जाए तो इंडिया भी हमारी तरह ही है ना, वो भी तो कॉलोनियलिज्म से निकला, वहाँ ब्यूरोक्रेसी, वहाँ डेमोक्रेसी क्यों बैठ गई, वो भी तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक
कॉम्प्लेक्स, और सिविल सर्विस को भी तबाह नहीं किया उन्होंने,
तबाह नहीं किया, आर्मी को भी तबाह नहीं किया, सब कुछ मौजूद है, बट उन्होंने एक तरीके से, एक ठहराव से, एक सोच से उन्होंने अपना पोलिटिकल निज़ाम बनाया। ठीक है, हमारे यहाँ जो मेरा ख्याल है, जिस चीज़ पे आप, मैं थोड़ा आपको पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे मुफक्कर हैं वो सारी जो ब्लेम है ना वो डाल देते हैं आर्मी पे, पॉलिटिशियन पे कोई ब्लेम नहीं आता। अब पॉलिटिशियन ने कभी दानाई यूज़ ही नहीं की। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नॉर्म्स की बात, मैं आपसे पूछता हूँ कि इन्होंने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब कॉपी किया, कोई सोचा कि वो हमारे मुल्क में बैठता है कि नहीं बैठता? ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने वो कॉपी करते साथ सिविल सर्विस को इन्होंने मारा, वो इन्होंने फौरन सिविल सर्विस रिफॉर्म किया, जिसके अंदर सिविल सर्विस रिफॉर्म नहीं किया बल्कि सिविल सर्विस को अपने नीचे लगाया और उसको ऐसा ऐसा बना दिया कि वो बेचारे अब खड़े नहीं हो सकते। ठीक है ना, उसको तकरीबन ख़त्म कर दिया, उसको बरमराते दे दे के उनको और भी काबू कर लिया। तो अब इसको कैसे हम देखें, मतलब इन सेंस कि ये किसका कसूर है? ये कह देना कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक का कसूर तो नहीं ना। एक और भी मैं पहलू आपको दे दूँ, क्या हमारे मुफक्किर इस बात पर कभी ठीक तरह बात करते हैं कि नहीं?
मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक तरह से बात नहीं करते, और मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो हकीकत होती है वो बहुत कम्प्लेक्स होती है। हम तो जो तालिब हैं सोशल साइंसेस के या इकोनॉमिक्स के, आप जैसे उस्ताद हैं, तो हमें तो मालूम है कि हकायक जो हैं वो नैरेटिव से बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, और सिविल मिलिट्री बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स होती हैं, सिविल मिलिट्री बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स में से एक है। और जब आप रिडक्शनिज्म लाते हैं, यानी पूरी कम्प्लेक्सिटी को एक नैरेटिव में, एक बाइनरी में या एक फॉल्ट लाइन के ऊपर ला के एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो दूसरे तरह से रोशन ख्याल भी हैं और जमहूरियत के लिए काम भी करते हैं, लेकिन उनके एनालिसिस में आपको बहुत सी वीकनेस नज़र आती है, एक रिडक्शनिज्म नज़र आता है, एक बाइनरीज नज़र आती है। तो हकीकत यकीनन इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, और जैसे मैं अर्ज कर रहा था, इसमें हमें जमहूरी एक्टर्स को, सियासतदानों को, सियासी जमातों को, और एक हद तक खुद अवाम को भी आप माफ नहीं कर सकते जो उनका किरदार है। देखिए, जहां तक सिविल सर्विस की या ब्यूरोक्रेसी की बात है, आपके पास तो स्टेट हो ही नहीं सकती अगर आप इफेक्टिव, जिसको हम वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी कहते हैं,
बिल्कुल सही,
यानी मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी जो किसी भी तरीके से सियासी असर और रसूख के ताबे ना हो, जो रियासत के ताबे हो, और रियासत के जो रूल्स हैं उनके तहत वो अवाम की खिदमत करे, यानी रूल ऑफ लॉ जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी इंश्योर कर सकती है, जो सियासी इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो और जो मसर और अहलियत रखने वाली हो। इसीलिए आप देखिए, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की जो किताब अभी आई है, बड़ी खूबसूरती से कुछ बातें उन्होंने की हैं, जिसमें एक दो हिस्सों में पाकिस्तान की तारीख को वो तकसीम करते हैं कि यानी पाकिस्तान बनने से लेकर 1990 तक, 1990 से अब तक, और वो कहते हैं कि 1990 तक पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरक्की की, और उसकी वजह यही बताते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज बहुत मसर थी और स्टेट डिलीवर कर सकती थी, और 1990 के बाद से हमारी जो सिविल सर्विसेज हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा डीके का शिकार हुई, जिसके नतीजे में स्टेट डिलीवर करने के काबिल नहीं रही। तो ये जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो जिस तरीके से सिविल सर्विस की जो रिफॉर्म्स की, जिस तरीके से उसको शैटर करके रख दिया एक बड़ी हद तक, और उसको बाकी लोगों ने जारी रखा, और मिलिट्री के जो हुक्मरान थे हमारे डिक्टेटर्स, उन्होंने भी उतना ही तबाह किया, शायद उससे भी ज़्यादा तबाह किया सिविल सर्विस को। और फिर देखिए, 1990 की दहाई में नवाज शरीफ साहब ने जो किया वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जब हम इत्तफाक सिविल सर्विसेज कहा करते थे पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज को, एक पूरी टर्म बन गई थी ICS, इत्तफाक सिविल सर्विसेज, यानी पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया, और उसके नतीजे में जो एक बहुत बड़ी मुसीबत आई कि स्टेट वीक हो गई। यानी आप देखिए, जो एक डेमोक्रेटिक ओवरसाइट है वो तो अपनी जगह बहुत, और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत अहम है, लेकिन ये कभी भी स्टेट की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट को कमज़ोर करके जमहूरियत नहीं बना सकते, आपको एक बैलेंस रखना है, जमहूरी अदारे भी मजबूत रहें लेकिन साथ साथ उसके जो रियासत है और रियासत के जो इदारे हैं, जो आपकी सिविल सर्विसेज हैं, वो भी मजबूत اہل اور مؤثر ہونے چاہیے, تبھی ملک ترقی کر سکتا ہے. اور جو ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی ہے, اور ظاہر ملٹری ڈکٹیٹرز کی تو ہم بات کر ہی چکے ہیں, ان کے تو قصور میں اور انہوں نے جو نالائکیاں کی اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں, شاید ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پر تو ایک پاکستان میں ایک عمومی اتفاق رائے پاکستان میں پیدا ہو چکا ہے, کوئی بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس پر اپالوجیٹک ہوں گے. ضیاء الحق صاحب نے جو کیا وہ ٹھیک کیا, یا مشرف نے جو کیا ٹھیک کیا. تو ظاہر ہے ہماری توجہ جو ہے وہ اپنے جمہوری پارٹیوں پر ہونی چاہیے, ان کی نااہلیوں اور ان کی کمزوریوں پر ہونی چاہیے. خاص طور پر اس وقت جبکہ 10 سال سے پاکستان میں جمہوریت قائم ہے, اس جمہوریت کو چلانا, اس کو بہتر بنانا, خود سیاسی جماعتوں کو ایک انسٹیٹیوشنز میں لے کر آنا, ایسے انسٹیٹیوشنز جو خود جس کے اندر بھی ڈیموکریسی ہو, جو مضبوط انسٹیٹیوشنز ہوں, اور نارمز کو سیٹ کر کے فالو کرنا, اگر یہ خود وہ جو اس جی
میں زہر صاحب یہ کہنے لگا تھا کہ جمہوریت کی تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات پوچھوں. میں آج کل ایک چھوٹی سی تحقیق کر رہا ہوں ریسرچ سسٹم آف پاکستان میں, تو میں 4-5 یونیورسٹیز میں گیا ہوں بات کرنے کے لیے, تو بڑی دیر کے بعد یونیورسٹیز کو تھوڑا اسٹڈی کیا, تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں جمہوریت کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں, ہماری یونیورسٹی میں فریڈم کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں. ہماری یونیورسٹیز میں جیسے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, جیسے لوگ کام کرتے ہیں, وہ ایک ریاستیں ہیں, ایک فیوڈل چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ میں اور بھی جو ادارے دیکھتا ہوں اپنے, ہمارے یہاں تو کہیں جمہوری نظام ہے ہی نہیں, تو ہم جمہوریت کیسے لا سکتے ہیں؟
جی دیکھیے, جہاں تک انسٹیٹیوشنز کی بات ہے, جو نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, میرے خیال ہے وہاں وہ ڈیموکریٹک تو نہیں ہو سکتے. یونیورسٹیز جو ہیں ایسا ڈیموکریٹک تو نہیں ہوتی, لیکن وہاں ڈیموکریٹک اسپرٹ ضروری ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ضروری ہے.
That's my point.
جی ایسا نہیں ہے کہ استاد کچھ کہنا چاہتا ہے اگر وہ خود کو سینسر کر رہا ہے, اور استادوں پر بھی اگر الزام لگے اور ان کی پٹائیاں ہوں کبھی مذہب کی بنیاد پر.
وہ چھوڑے, میں تو دیکھتا ہوں کہ استاد اور وائس چانسلر کی جو ریلیشن شپ ہے وہی دیکھ لیں, اب باقی بات چھوڑیں. وائس چانسلر راجا ہے اور استاد کمی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کبھی ایسی سچویشن کسی یونیورسٹی میں نہیں دیکھی. میں جتنی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں پروفیسر وائس چانسلر سے بہت اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کا رول ہی کوئی نہیں ہوتا, پروفیسر ہوتے ہیں, پروفیسر چیمپئنز ہوتے ہیں, وہ خود کنکوسٹرز ہوتے ہیں وغیرہ. یہاں تو پروفیسر بیچارے لائن حاضر ہوتے ہیں یونیورسٹی کے سامنے, وائس چانسلر کے سامنے, اور اول تو موسٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں ہی نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو ہم نے ہر جگہ نظام بنایا ہوا ہے. سیکرٹری صاحب چلے جائیں آپ دفتر میں, چل جائیں سیکرٹری صاحب خدا ہیں, باقی لوگ تو سب نیچے ہیں کمی کمی. میں یہ کلب میں جاتا ہوں, کلب میں بھی یہ سچویشن ہے. اسلام آباد میں کلب میں چلے جائیں, جو چیئرمین ہے اس کی اور حالت ہے, آرڈنری ممبر کی اور حالت ہے, اور جو نان ممبر ہے تو مارا گیا بےچارا. تو ہمارے تو جمہوری نظام ہے ہی نہیں, تو ہم کیسے بنائیں بتائیں؟
آپ بالکل درست کے
پھر
بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ایک تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں, میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اتنا پاور سینٹرڈ ہے.
یہی بات ہے, یو پٹ اٹ ویری ویل. بالکل جی, گو اہیڈ.
کب کون جو ہے, جیسے ہی دو افراد ملتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں غور سے, ان کے انٹریکشن کو, تو پہلی چیز جو وہ جج کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس کے سینگ زیادہ بڑے ہیں, کون طاقت میں زیادہ ہے. وہ جس طرح کے یونیفارم انسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے نا کہ کس نے کس کو سلوٹ کرنا ہے, تو ہمارے ہاں پورے معاشرے میں یہ بات آ گئی ہے کہ کس نے جھک کر سلام کرنا ہے اور کس نے سیدھا کھڑا ہونا ہے, پہلے انٹریکشن میں یہ طے ہوتا ہے. اور مسلسل ایک پاور اسٹرگل چلتی ہے جو ان جگہ پہ بھی ہے جہاں پہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں اس بات کا کیا تعلق ہے, جہاں پہ ظاہر ایک استاد ہونا ایک الگ بات ہے اور ایک انتظامی عہدہ رکھنا ایک الگ بات ہے. اور اس کے ساتھ آپ جو یہ خاص طور پہ یونیورسٹیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اگر اس پورے معاشرے کے ساتھ لنک کریں, جیسے کہ وہ بہت مشہور سوشیالوجسٹ جو پائری بوٹیو ہیں, انہوں نے جس چیز کو کہا ہے کہ سمبولک کیپیٹل, کہ کس معاشرے میں کس چیز کو ایک بہت زیادہ عزت اور احترام دیا جاتا ہے, سمبولیکلی ہائی ویلیو دی جاتی ہے. جب کسی چیز کے ساتھ سمبولک کیپیٹل وابستہ ہو تو لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں, اس کو ویلیو کرتے ہیں. تو پاکستان میں آپ دیکھیں علم کے ساتھ سمبولک کیپیٹل وابستہ نہیں ہے, عہدے کے ساتھ وابستہ ہے. اگر آپ عالم ہیں اور آپ دولت مند نہیں ہیں تو لوگ آپ پہ ترس کھاتے ہیں جتنی بھی قابلیت ہو, اور اگر آپ دولت مند ہیں, آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے اور آپ کا بڑا پیٹ ہے اور زیادہ آپ کے پاس مال ہے اور آپ بالکل بھی ان پڑھ ہیں, تو تب بھی لوگ آپ کی عزت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ بالکل اس کا مسئلہ ہے, اور اس میں سٹیٹ کا بھی بالکل کردار ہے क्योंकि स्टेट सिंबॉलिक कैपिटल्स को बनाने में, एसोसिएट करने में, उनकी कदर करने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। तो ये बिल्कुल, ये भी हमारा इसमें मसला मौजूद है। और उसी तरह से देखिए, उसी के साथ आपको नजर आते हैं रब्बानी साहब के साथ क्या हुआ, रब्बानी साहब की जगह कौन आ गए, यानी एक इंतहाई काबिल आदमी जिसने जमहूरियत के लिए इतनी खिदमात दी थी, जिस पर तमाम पार्टियों का इत्तफाक था, वो नहीं आ सके। और एक ऐसा आदमी, मतलब जो सिनेमा चलाने वाला आदमी था, और वो पार्टी में बैठ के ये फैसला कर रहा है कि रजा रब्बानी नहीं बन सकता, और वो 12 आदमी बलूचिस्तान के जिन्होंने एक बेवफाई करके और खुद से एक ग्रुप बनाया है, वो उनका एक नुमाइंदा वो चेयरमैन सेनेट बनेगा। तो ये असरात आपको जो हमारे माशरे के जो मामलात आप जिनके फरमा रहे हैं, उसकी सियासत पर असरात आपको नजर आ रहे हैं।
ये आपने बहुत अच्छी बात की, जो सिंबॉलिक कैपिटल की बात की। देखिए जखीम साहब, मैं भी ये बड़ा सोचता रहता हूँ, आपने आज मेरे काफ़ी ये मुझे एक चीज़ जगा दी मेरे दिमाग में, कि हमारे मुल्क में सिंबल्स ऑफ पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जैसे, मैं जब प्लानिंग कमीशन में था तो मुझे लोग हमेशा कहते थे, यार तुम किस किस्म के मिनिस्टर हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई बंदे नहीं है, कोई सायरन्स नहीं बोल रहे, तुम्हारे घराओं कोई नौकर शौकर नहीं। ये हमारे बहुत ज़रूरी बातें हैं, और पावर हमारी फ़्लो इस चीज़ में करती है कि आपके घर के आगे गार्ड्स कितने हैं, आपका सरकारी घर है कि नहीं, ग्रीन नंबर प्लेट है कि नहीं, गाड़ी के आगे पीछे बंदे कितने हैं, क्या इसका भी कोई ताल्लुक है? क्योंकि हमने ये जो कॉलोनियल सिंबल ऑफ पावर थे, ये हमने अपने ब्राउन साहब्स को दे दिए, क्या इसका कोई असर है इस चीज़ पर?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इसका जमहूरियत पे असर है कि पाकिस्तान में इसके नतीजे में जो लोग सिंबल्स के पीछे जाते हैं, जो गाड़ी पे हूटर लगवाना चाहते हैं, जो अपना मिनिस्टर का अपने लिए लकब हासिल करना चाहते हैं, एमपी एमएनए का लकब हासिल करना चाहते हैं, वो हर कीमत पर इस सिंबॉलिक कैपिटल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जायज़ नाजायज़ तरीके से अपनी दौलत इस्तेमाल करके, बजाय इसके कि वो लोग जिनकी जमहूरियत से कमिटमेंट है, जो अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, वो इस मैदान में आए। हमें तमाम गलत लोग इस मैदान में इस वजह से नजर आते हैं कि इसके साथ जो एक प्रेस्टीज वाबस्ता हो गई है, जो गलत तरह की प्रेस्टीज वाबस्ता हो गई है, वो प्रेस्टीज नहीं जो कि एक इज्जत की, जमहूरियत की, खिदमत की, जो एक एमपी की एक डेवलप्ड मुल्क में होती है, उसकी बजाय ये पावर वाली जो एसोसिएशन हो गई हैं, तो उसके नतीजे में हमें नजर आता है कि वो लोग इसमें आने की कोशिश करते हैं जिनको शायद कुछ और करना चाहिए, जिनको शायद ताकत इस्तेमाल करने का कोई और तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, या जिनके पास ताकत होनी नहीं चाहिए, तो वो सियासतदान बनने की बहुत से लोग कोशिश करते हैं।
जखम साहब, ये देखिए एक और भी तो मसला है ना, कि अगर मैं एक और तरीके से इसको देखूं, जो आपने पूरी हिस्ट्री बयान की कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी आर्मी, हमारे पॉलिटिशन, हमारा वगैरह वगैरह, हम इसमें सब निज़ाम को अगर देखूं, जैसे आपने देखा, मैंने अभी रिसेंटली किताब लिखी थी, मैंने उसमें यही कहा था कि भाईजान हमारा सारा निज़ाम जो है, मुझे तो नज़र नहीं आता कि कलोनियलिज्म से हम बाहर निकले हैं कि नहीं निकले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपना लीगल सेटअप देखूं, हमारी तकरीबन बेशतर जो कानून हैं वो कलोनियल ज़माने के हैं। मैं तो कहता हूं, बल्कि किसी को इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि हमारा कितना कानून कलोनियल ज़माने में अभी तक बैठा हुआ है, अभी तक हमने उसको चेंज ही नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन जो सी हमारी, वो है जो किसी ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने बनाई थी, हमने कॉपी कर ली, ठीक है जी। उसके बाद सिविल सर्विस भी तकरीबन वही है जो इन्होंने दी थी हमें कलोनियल्स ने, आर्मी भी तकरीबन वही है, उनकी रहायश गहें भी वही हैं, बल्कि थोड़ी सी और बना दी हैं, पर वो जी ओ आर वगैरह, कंटोनमेंट्स वगैरह वैसी हैं। तो हमने कलोनियल निज़ाम को चेंज ही नहीं किया, और हमारे जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं वो उसी तरह आ रहे हैं राजों की तरह, कि कलोनियल तरीके से वो यहाँ से कुछ लेके जाएं। जैसे अभी शशि थरूर ने किताब लिखी है, वो कहता है कि कलोनियल निज़ाम था यहाँ से पैसे एक्सट्रैक्ट करके बाहर ले जाने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो भी पावर्स दैट बी हैं, जो हमारी एलीट है, वो भी कोशिश तो यही कर रही है यहाँ से पैसे निकाल के बाहर लेके जाए। तो क्या ये एनालिसिस सही होगा, या इससे आप डिसएग्री करेंगे?
मैं आपके साथ एक बहुत बहुत बड़ी हद तक इत्तफाक करूंगा। आप देखिए, फ्रांसिस फुकुयामा की जो दो मशहूर मारूफ किताबें दुनिया में सियासी इर्तका के बारे में हैं, उसमें वो किस तरह दिखाता है कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल की जो तारीख है, वो मुल्कों के सियासी निज़ाम पर किस तरह असरअंदाज हो रही है। मिसाल के तौर पर चीन का जो 2000 साल का हिस्ट्री है, तारीख है, वो किस तरह आज भी उसकी सियासत और सियासी निज़ाम पर असरअंदाज हो रही है। तो मेरे ख्याल में हमारा मामला भी कुछ बहुत मुख्तलिफ नहीं है, हमारे पास भी हिस्टोरिक बैगेज मौजूद है भारत और पाकिस्तान में। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान में तो हमने और शायद भारत में भी बहुत से उसको बाकी रखने की, उन तबकों में बाकी रखने की कोशिश की है जो उससे मफाद उठा रहे हैं, जो उससे फायदा उठा रहे हैं, जो तफरीक, जिस तरह आपने तफरीक की तरफ इशारा किया, जो तफरीक माशर्ती और जो तफरीक ताकत की उन्होंने एक कॉलोनियल निज़ाम ने अपने फायदे के लिए पैदा की थी, तो पाकिस्तान में जो तबकात उससे फायदा उठा रहे हैं उन्होंने उस फायदे के लिए उसको जारी रखने की कोशिश की है। इसमें पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल अलीट है जिनका एक हिस्सा मुंतखब होकर हमारे असम्बलियों में आता है वो भी शामिल है, और जो हमारी अनइलेक्टेड अलीट है, हमारी मिलिट्री और हमारी जो सिविल सर्विस है, उन्होंने भी उस निज़ाम को कायम करने की कोशिश की है। मसलन आप गजटेड और नॉन गजटेड अफसर की जो तकसीम है दोनों इदारों में, आप उसमें देखिए उसमें उसमें किस तरह का एक अपार्थेड है, किस तरह का एक ब्राह्मणिज्म है, जिसकी बुनियाद ये थी कि गजटेड ऑफिसर जो है वो गोरा होता था, जो नॉन गजटेड थे वो लोकल होते थे, ब्राउन लोग होते थे, वो तो इसलिए रखना चाह रहे थे। लेकिन उसी तरह की तकसीम हमने जारी रखी है क्योंकि जो गजटेड अफसर हैं, जो अपने आप को बड़ा साहब समझते हैं, वो नहीं चाहते कि छोटे लोग जो हैं उनके बराबर आएं या तरक्की करके उनके हिस्से में आएं। इसी तरह जो उन्होंने एक अपना सिंबलिज्म था, उस सिंबलिज्म को बरकरार रखा है माशरे में अपनी हैसियत के लिए, वही क्लब अब तक चल रहे हैं, उसी तरह के वो पर्क्स इंजॉय कर रहे हैं, उसी तरह के घरों में रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल उस निज़ाम को रेजिस्ट करने की कोशिश मौजूद है, और हमने जो एक सोची समझी कोशिश करनी थी कि उस निज़ाम को बदल कर अब हम अवाम की फलाह के लिए एक सही तौर पर रिप्रेजेंटेटिव निज़ाम बनाए, ऐसा निज़ाम बनाए जिसमें लोग सेंटर पर हो, लोगों के लिए हो, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ना हो। और आप जो फरमा रहे हैं यकीनन वो एक आस्पेक्ट है कि जिसमें लूट मार करके बाहर कुछ लोग लेकर जाते हैं, लेकिन उससे भी जाहिर है कुछ बड़ी बात है, सिर्फ उतनी बात नहीं है, लूट मार करके भी लोग लेकर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जो लूट मार हो रही है वो भी कुछ कम नहीं है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
तो वो भी आपको नजर आएगी। और उसके अलावा मेरे ख्याल में हमें एक चीज दूसरी जिस पर जरूर नजर रखनी चाहिए वो ये है कि सिर्फ पैसा जो है वो वाहिद चीज नहीं है जिसके लिए जराइम किए जाते हैं। दुनिया में जो बदतरीन जराइम हुए हैं वो ताकत के लिए हुए हैं। आप देखिए हिटलर और मुसोलिनी जो कुछ कर रहे थे वो शायद पैसे के लिए नहीं कर रहे थे, ताकत के लिए कर रहे थे। जियाउल हक साहब ने शायद बहुत पैसा नहीं बनाया। तो जो पावर एज मोटिव है और ताकत की खातिर लोग जो जराइम करते हैं और जो जद्दोजहद करते हैं, तो इसमें हमें जो पावर का मोटिव है उसको भी जरूर देखना चाहिए।
बिल्कुल सही। पर मुझे एक और बात बताइए कि ये जो अब इस तरफ देखें कि ठीक है ये तो माना कि ये हमारी हिस्ट्री जो सी है वो हमारे ऊपर एक किस्म की भारी पड़ रही है और वो हिस्ट्री के नीचे से हम निकल नहीं सक रहे। और जो मुझे हैरानगी होती है वो ये है कि अब 70 साल हो गए हैं, मैंने कोई इस पर कोई अच्छा एनालिसिस नहीं मैं देख रहा, ना मैं कोई डिबेट देख रहा हूँ। बल्कि जो मुझे हैरानगी हो रही है कि इस मुल्क में अब जो डिबेट जो मैं रोज़ टीवी पे देखता हूँ या रिसालों में देखता हूँ या अखबारों में देखता हूँ वो यही होती है कि कल शाम को ये हुआ इस पर बात कर लें, कल शाम को ये हुआ इस पर बात कर लें, पर हम सिस्टेमिक जो प्रॉब्लम है उस पर हम बात नहीं कर रहे कि ये हम कॉलोनियल निज़ाम को ना तोड़ सक रहे ना समझ सकते कैसे तोड़े। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टूटी हुई है, हमें समझ नहीं आ रही कैसे तोड़े। जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो ऐसे होती हैं जो कि पॉलिटिशियन अपनी पावर के लिए बनाते हैं, डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए नहीं बनाते। ठीक है जी, जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो एक गठजोड़ था, ये नहीं उन्होंने किया कि जी डेमोक्रेसी को अमेंड कैसे करें, पार्लियामेंट को कैसे चलाएं। भाई अभी तक ये पार्लियामेंट को चला ही नहीं सके, अभी तक कोई, आपने 18th Amendment की बड़ी अच्छी बात की, बट उसके अलावा इन्होंने जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है उसमें भी कोई खास चेंज नहीं किया। इन्होंने जो हमारी इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर है, जुडिशल ले लें, जुडिशरी भी हमारी 19th century में बैठी हुई है, उसको भी हमने रिफॉर्म नहीं किया। तो क्या वजह है हम इतने कोरे क्यों हैं रिफॉर्म पे, हम क्यों नहीं सोच सकते रिफॉर्म के बारे में? बल्कि मैं तो देखता हूँ रिफॉर्म की डिबेट ही नहीं होती हमारे मुल्क में, हम बात ही ये रोज करते हैं कि अच्छा जी कौन इलेक्ट होगा कौन नहीं इलेक्ट होगा या पावर कहाँ जाएगी, रिफॉर्म की बात ही नहीं करते।
बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए उसमें उसमें जो दो तीन आपने जिन लेवल्स की तरफ इशारा किया एनालिसिस का, एक तो मेरे ख्याल में हमारा जो जहाँ से रिसर्च और नई सोच उभरनी चाहिए, सोचने वाले लोग, एकेडेमिया, रिसर्चर्स, एक तो वो उस सतह का, उस क्वालिटी का काम नहीं कर रहे जिस तरह का होना चाहिए। और दूसरी बात जो नॉलेज मीडिएशन होती है कि जो उनके पास नॉलेज है उसे बेहतर तौर तक आवाम तक वो पहुंचाएं, यानी जो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल का रोल है। देखिए माशरा बदलने में पब्लिक इंटेलेक्चुअल का बहुत बड़ा रोल होता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो आप रोल प्ले कर रहे हैं, इतनी एफर्ट करके बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी फायदे के, जो आपकी राय है और जिनको समझते हैं आपके, उनकी राय शायद उनमें कुछ थोड़ा बहुत वजन है, उनको अवाम तक फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये पब्लिक इंटेलेक्चुअल का इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है कि वो लोग जो एकेडमिक लोग हैं, साहिब इल्म लोग हैं, वो अवाम तक राय लेकर जाएं, डिबेट लेकर जाएं। मुझे कितने आप जैसे कितने लोग नजर आते हैं, बहुत कम नजर आएंगे लोग जो इस तरह पब्लिक इंटेलेक्चुअल का इंस्टीट्यूशन जो है उसको रिवाइव करने की, उसका रोल प्ले करने की कोशिश करें। तो उसके नतीजा क्या निकला है कि हमारे यहाँ पूरी बहस बहुत सतही हो गई है। आपने बिल्कुल दर्ज कहा कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, तब्दीली तो स्ट्रक्चर्स को तब्दील करने से आएगी ना जी, कि अगर आप उन स्ट्रक्चर्स को देख ही नहीं रहे, उन फॉल्ट लाइंस पर, उन पर बहस ही नहीं कर रहे, आप क्लास का एनालिसिस नहीं कर रहे, आप इंस्टीट्यूशंस का नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूशंस का डिलीवरी पे नहीं कर रहे, आप रिफॉर्म्स पे बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है आप तब्दीली पे बात नहीं कर रहे। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, यहाँ पर तो पॉलिसीज पर भी आप बात नहीं कर रहे, आप बल्कि आप अफराद पे बात कर रहे हैं। आप नवाज शरीफ और इमरान खान को लड़ाने ही की बात कर रहे हैं सुबह शाम, और आप कबाइल की बात कर रहे हैं कि आप पीटीआई के कबीले में हैं या मुस्लिम लीग नवाज के कबीले में हैं या पीपल्स पार्टी के कबीले में हैं। और वो लोग जिन्हें दूसरों को इन्फॉर्म करना है, जो सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो भी इन कबाइल के अंदर बैठकर एक कबाइली जंग का हिस्सा बन रहे हैं, बजाय इसके कि वो पॉलिसीज की बेस पे क्रिटिसाइज करें और स्ट्रक्चर्स की बेस पे बहस करें और गुफ्तगू करें। तो ये इतनी बड़ी वीकनेस है जिसकी वजह से हम फंस गए हैं। और उसका जो नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान ये हो रहा है कि ऐसी गुफ्तगू के नतीजे में जो एक डिमांड साइड ऑफ डेमोक्रेसी डेवलप होनी चाहिए, जो अवाम की तरफ से एक दबाव आना चाहिए पाकिस्तान के जो पावर एलीट है उस पर, मुंतखब भी और गैर मुंतखब भी, वो दबाव नहीं आ रहा क्योंकि अवाम तक वो डिबेट नहीं पहुंच रही और अवाम मोबिलाइज नहीं हो रहे, उसको सियासी जमातें भी उस तरह मोबिलाइज नहीं कर रही, और सियासी जमातों पर भी और बाकी सब पर जो एक डिमांड अवाम की तरफ से आनी चाहिए, वो समहाउ डिमांड अगर डिवेलप होती है तो वो बड़ी मिसगाइडेड होती है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। मैंने वो थोड़ी सी रिसर्च की थी, मैंने अभी जो किताब लिखी लुकिंग बैक उसके लिए, तो मैंने जो देखा है कम से कम वो ये कि जी अगर आप चल जाएं बरतानिया में, चल जाएं यूरोप में, चल जाएं इनलाइटनमेंट अगर आप देखें कहाँ से आए, या रेफॉर्मेशन कहाँ से आए, या वगैरह वगैरह, इवन साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहाँ से आई, वो बहुत सारे मुफक्कर हैं जिन्होंने ये लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल भी नील फर्गसन ने किताब लिखी है, उससे पहले जोल मोकिर ने किताब लिखी थी कि जी एक नेटवर्क्स ऑफ थॉट होते हैं। तो मैंने अपनी किताब में वो लिखा कि पाकिस्तान में शायद आगे को नेटवर्क्स ऑफ थॉट आ जाए, पर मुझे नज़र नहीं आते कि जी बड़ी सिंपल सी बात है, जब के आप नेटवर्क्स ऑफ थॉट, जैसे कि जब वहाँ इनलाइटनमेंट की डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर वगैरह ने किताबें लिखी, लोगों ने किताबें खरीदी, पढ़ी, उसके बाद बरतानिया, फ्रांस, सब जगह, फ्रांस में तो रेवोल्यूशन आई, पर बरतानिया में एक रिफॉर्म की डिबेट शुरू हो गई, वो फिर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म की तरफ चली, उसके बाद एक वेलफेयर रिफॉर्म पे डिबेट शुरू हुई, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट और प्रोग्रेसिव मूवमेंट ने शुरू की, वो एक डिबेट शुरू हुई। तो उसके बाद प्रोग्रेसिव रिफॉर्म आया, वेलफेयर रिफॉर्म आया, जिसके तहत आज बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, हेल्थ केयर और रेगुलेशन वगैरह वगैरह। अब ये मैं हिस्ट्री में जब देखता हूँ कि ये बहुत सारी मूवमेंट्स थी हमारे मुल्क में, तो मैं बड़ा मायूस हो जाता हूँ। ज़ैकम साहब, क्या मैं गलत हूँ? आई होप प्लीज़ प्रूव मी रॉन्ग।
नहीं, मुझे भी आप जैसा ही, बिल्कुल आपकी तरह ही महसूस होता है कि वही जो नेटवर्क्स ऑफ थॉट होने चाहिए और उनकी जो एक ऐसी तादाद होनी चाहिए जिसके नतीजे में कोई बहस बन सके, वो नहीं बन रही। हमारे यहाँ किताब बहुत कम छपती है, ऐसे स्पेसेस बहुत कम मौजूद हैं जैसे कि स्पेसेस आप बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं। अगर वो स्पेसेस बन गए हैं तो उनके गिर्द जो एक 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 खास तादाद लोगों की जमा होनी चाहिए, वो जमा नहीं है, बहस नहीं है, गुफ्तगू नहीं है। अगर गुफ्तगू है तो उसको भी हमने एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया है, उसको भी एक एंजॉयमेंट प्लेयर एंटरटेनमेंट के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं।
बड़ी अच्छी आपने
और जहाँ पे
जी बड़ी अच्छी आपने बात की। अब देखिए कि फ्रांस में 17th सेंचुरी में सैलों कल्चर था, जहां अमीर लोग बैठ के रात को जब खाना खाते थे तो बड़े बड़े फलसफियों को बुलाते थे बातें करने के लिए, बिकॉज वो कन्वर्सेशन और पढ़ी लिखी बातें करना एंजॉय करते थे, उसके थ्रू वो सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। यही चीज़ें अगर आप देखें बरतानिया में भी हो रही थी। हमारे यहाँ 21वीं सदी में अभी हम इधर नहीं पहुँचे।
जी हम 21वीं सदी में बल्कि उससे ज्यादा हम पीछे चले गए। हम खुद जो कुछ आज से 40-50 साल पहले थे उससे पीछे जा रहे हैं। आप देखिए कि जहां पे कुछ ऐसी कोशिश की जाती है तो उसका गला घोंटने की कैसी कोशिश की जाती है। हम तो गुफ्तगू और बोलने से भी अब मुझे लगता है मुश्किल होता जाएगा, खुल के आप बोल नहीं सकते। आप देखिए कराची में सबीन महमूद के साथ क्या हुआ, आपने यूनिवर्सिटीज की तरफ इशारा किया कि खुद मशाल खान के साथ क्या हुआ, आपने खुद यूनिवर्सिटीज की तरफ इशारा किया कि यूनिवर्सिटीज में कितना मुश्किल है एक उस्ताद के लिए कि खुलकर वो अपने तालिब इल्मों के सामने अपनी राय रख सके। यहाँ पर स्टेट भी और नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी, नॉन स्टेट एक्टर्स भी जिस तरह की आपकी आवाज दबाते हैं, आपको सेंसर करते हैं, उसके नतीजे में तो तब्दीली और भी मुश्किल होती जा रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो तो मुसलसल मुझे लगता है कि उसके हालात और से और खराब हो रहे हैं।
पर जगम साहब इसमें एक और भी तो प्रॉब्लम है ना, आप भी माशाल्लाह अखबारों में लिखते हैं, मैं काफ़ी देर पहले लिखता था, अब छोड़ दिया है, किताब लिखने की कोशिश की, पेपर लिखने की कोशिश करते हैं, सब करते हैं वगैरह, सब नहीं काफ़ी लोग करते हैं, बट पॉइंट ये कि मैं एक और चीज़ देखता हूँ जो बड़ी अजीब बात है कि हमारे मुफक्किर भी जौन से हैं वो एक दूसरे से इंगेज नहीं करना चाहते, ना रिव्यू करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना डिस्कशन करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल साइटेशन भी नहीं देते। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, जो कि हमारे मुफक्करों के भी नॉर्म्स नहीं सेट हुए, छोड़ें आप बाकियों को लोगों को, हमारे मुफक्करों ने भी नॉर्म्स नहीं सेट किए। वो सोचते हैं कि जी उनकी कंसल्टिंग बिजनेस इंटेलेक्चुअलिज्म है, वो जाते नहीं जो इंटेलेक्चुअलिज्म के बेसिक रूट्स हैं उसकी तरफ नहीं जाते। तो क्या ये
बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं,
क्या ख्याल है इसके बारे में?
मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूं, और इसको मैं पहले तो इस चीज़ से लिंक करूंगा जिसको मैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल कह रहा हूं, कि अगर जो मुफक्किर हैं, जो एकेडमिक हैं, जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, जो रिसर्चर हैं, वो ये नहीं समझते कि उनका इल्म सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि माशरे ने उनको जो ये इल्म का मौका दिया है, कुदरत ने दिया है, उनके अपने बैकग्राउंड की वजह से मिला है, उस पर लोगों का भी हक है। और एक ऐसे माशरे का जो इतना कम खानदा माशरा है, कम तालीम याफ्ता माशरा है, उनके इल्म पर उनका हक है, और उनके इल्म की पहली जिम्मेदारी ये है कि उनकी जो कुछ वो जानते हैं उसे पहली बात तो ये कि अवाम तक पहुंचना चाहिए, ताकि अवाम उसमें बहस में, उस गुफ्तगू में, उस नेटवर्क में शामिल हो सके। ये वो जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं समझते, वो यही समझते हैं कि उस इल्म का मकसद ये है कि उनको कंसल्टिंग मिल जाए, उनको काम मिल जाए, उनकी किताब छप जाए, उनकी वाहवाह हो जाए, उनको कोई ओहदा मिल जाए, कोई सरकारी ओहदा मिल जाए, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या चेयरपर्सन बन जाए। वो ये नहीं समझते, तो वो ये नहीं समझते कि उनका रोल ये भी है कि पाकिस्तान जैसे माशरे में वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पर अपना मौसर किरदार अदा करें। और जब वो रोल ये नहीं समझते तो फिर वो किसी ऐसे नेटवर्क का हिस्सा भी नहीं बनते, वो अपने नॉलेज को एक पर्सनल गुड के तौर पर देखते हैं, एक पब्लिक गुड के तौर पर नहीं देखते।
सर हम सब ये बताएं, आपने ये टर्म बहुत यूज़ किया पब्लिक इंटेलेक्चुअल, ज़रा प्लीज़ इसको समझाएं कि ये क्या है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल क्या होता है, कैसे बनता है। लेकिन अब मैं आज अपने आप को अनाउंस करता हूँ पब्लिक इंटेलेक्चुअल, उसका तो कोई फायदा ना हुआ, या मैं अब क्या हामिद मीर पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, क्या कामरान खान पब्लिक इंटेलेक्चुअल, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज दे आर फेमस पीपल, क्या टीवी पे जो लोग आते हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्या होता है पब्लिक इंटेलेक्चुअल, कैसे बनता है?
अब बिल्कुल ठीक है, चलें आप अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर रहे, मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूँ। देखिए पब्लिक इंटेलेक्चुअल को इस तरीके से देख लेते हैं कि अगर आप देखें, अगर एक तरफ से आप एकेडमिक को देखें और दूसरी जगह पर आप अवाम को रखें, अगर आप इस वक्त की मौजूदा जो सोशल साइंसेज हैं अगर आप उनको देखें तो वो उसकी सूरत हाल ऐसे बन चुकी है कि वो बहुत इंसेस्टुअस हो चुके हैं, कि एक शोबे के लोग जो अपना इल्म पैदा कर रहे हैं वो खुद ही कंज्यूमर हैं। अगर इकोनॉमिस्ट जो इकानमी का, इकोनॉमिक्स का नॉलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कंज्यूम भी वो खुद कर रहे हैं। अगर आप कोई जर्नल आर्टिकल देखें तो अगर इकोनॉमिक्स का कोई जर्नल आर्टिकल है तो वो एक ले रीडर के लिए एक्सेसिबल नहीं है। अगर सोशल साइंस की, एंथ्रोपोलॉजी की कोई किताब या कोई जर्नल आर्टिकल है तो वो एक ले रीडर के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो जाहिर है इसको कह सकते हैं हम जंगल में मोर नाचा, यानी वो आवाम तक नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ आवाम है जिन तक ये सब कुछ एक्सेसिबल नहीं हो रहा। अब एक ऐसा इकोनॉमिस्ट जो जर्नल आर्टिकल भी लिख सकता है, जो किताब भी लिख सकता है, और जिस जिसको जाहिर है एक अगर इकोनॉमिस्ट है तो उसकी सब कि दूसरे इकोनॉमिस्ट उसकी कदर करें, उसके इल्म को एक आला तौर पे परखा जाए, अगर वो इस बात से हटकर वो ये समझता है कि ये जो कुछ मेरा इल्म है, जो कुछ मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, इसको आम लोगों तक पहुँचना चाहिए और इसके नतीजे में तब्दीली आनी चाहिए, उसकी अपने इल्म के साथ 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 एक तब्दीली पर भी कमिटमेंट है। देखिए, प्योर एकेडमिक वो होता है जो जिसका नॉलेज प्रोडक्शन के साथ कमिटमेंट होती है, जो नॉलेज की प्रोडक्शन को सोशल चेंज के साथ लिंक नहीं करता। जब एक एकेडमिक, जब कोई साहिब इल्म अपने इल्म को माशरती तब्दीली के साथ लिंक करते हुए माशरे को तब्दील करने की कोशिश करता है, अपने इल्म को एक औजार बनाकर, अपने इल्म को इस्तेमाल करके, तो वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल है मेरी नजर में। यानी अपने नॉलेज को वो साथ साथ मीडिएट करने की भी कोशिश करता है, आम लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करता है। सहाफी सहाफी होते हैं, वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकते क्योंकि उनकी कमिटमेंट उन्होंने अपनी जिंदगियां इल्म हासिल करने पर नहीं लगाई, किसी शोबे पर आप एक खास दस्तरस हासिल करने की कोशिश नहीं की। और आपने वेस्ट के हवाले दिए, आपने कुछ लागों के नाम लिए, आप देखिए 60 की दहाई में जो वेस्ट में इतनी बड़ी तब्दीली खासतौर पर यूरोप में आई, उसमें बर्ट्रेंड रसल का कितना बड़ा असर था, जो एक फिलासफर था। इसी तरीके से आपको सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वेबर का कितना असर है माशरे को बदलने में, जो एक सोशियोलॉजिस्ट था।
बिल्कुल,
तो आप इनको एक साथ साथ, आप इनको रसल को तो खासतौर पर एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा, शायद 20वीं सदी के बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में से शामिल है। तो मेरे ख्याल में ये वाला जो इंस्टीट्यूशन है हमारे खास तौर पर माशरे में, जहाँ पे अहले इल्म अफराद की तादाद बहुत कम है, तो उन पर तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर जहाँ पर हमारे नॉन एकेडमिक जो नॉलेज मीडिएटर्स हैं, साफियों में भी हमारे वो जान नहीं है कि जो समझ सके। मिसाल के तौर पर आप खुद इकानमी की रिपोर्टिंग को देखिए, या मिलियन को बिलियन बना देते हैं, बिलियन को मिलियन बना देते हैं, रुपए को जो है वो डॉलर बना देते हैं, डॉलर को रुपया बना देते हैं। तो यहाँ पे तो और भी मसला है कि खुद बहुत इकोनॉमिस्ट खुद रीच करने की कोशिश करें आवाम तक, इस बैरियर को तोड़ें।
बट ज़रम साहब, एक मसला आ जाता है कि ये जो मेरा ख्याल है कि बर्ट्रेंड रसल को आप, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और भी ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। बेशतर लोग निकलते हैं या तो यूनिवर्सिटी के थ्रू, या फिर कोई ऐसी मेजर किताबें लिख के जो पॉपुलर हो जाएँ, लोग समझ जाएँ, या फिर मीडिया आजकल आ गया, मीडिया में आ जाए। जैसे आज स्टीवन हॉकिंग्स मारा है फॉर एग्जांपल, बड़ा बहुत बड़ा पब्लिक इंटेलेक्चुअल था, उसने माशाल्लाह बड़ा फंडामेंटल काम भी किया, पर फिर मीडिया
भी बड़ा काम किया, से मुताल्लुक रखता था, हाँ, फिर भी पब्लिक इंटेलेक्चुअल था।
और दूसरा माजूर भी था, इन द सेंस के बेचारा चल भी नहीं सकता, मतलब इन सब ब्रेन के बाद कुछ भी नहीं रह गया था उसके पास, पर फिर भी उसने बहुत पब्लिक इंटेलेक्चुअल का काम किया। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये पब्लिक इंटेलेक्चुअल क्या निकल सकता है ऐसी इंटेलेक्चुअल बैरन एनवायरनमेंट में, जहां ना यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, ना सरकारी इदारे काम कर रहे हैं, कोई डिमांड फॉर इंटेलेक्ट तो है नहीं। जैसे मैंने आपको कहा ना, मैंने अभी किताब लिखी थी 6-7 महीने पहले, मैं रो पढ़ा हूँ उसको खुद ही डिस्ट्रीब्यूट, हालांकि आपने कहा ना एक्सेसिबल बनाए, मैंने कोशिश की 300 रुपये की किताब
जी,
लोगों को मुझे देनी पड़ती, कोई खरीदना नहीं चाहता, और जब लेते भी हैं पढ़ते भी नहीं, स्टूडेंट्स के पास जाओ स्टूडेंट्स भी कहते हैं हमें कोई टाइम नहीं पढ़ने का। तो यहाँ डिमांड भी नहीं है, इदारे भी नहीं हैं, तो कैसे पब्लिक इंटेलेक्चुअल निकलेंगे? फिर तो वही निकलेंगे ना जो सरकार ने ब्लेस किया।
बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बदकिस्मती से ऐसा ही है, हमारे पास ऐसा ही एनवायरनमेंट है, और ये सब मायूसियां और ये सब मुश्किलात मौजूद हैं, डिमांड की कमी भी मौजूद है, किताब भी कोई नहीं पढ़ता। लेकिन अब ऐसे बैरन एनवायरनमेंट में तो ज्यादा मेहनत की जरूरत है। आप देखिए, अगर एरिड एग्रीकल्चर जो है वो शायद ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन शायद ज्यादा जरूरी काम भी है, कि अगर एनवायरनमेंट हमारा बैरन है तो इस पर पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस माहौल को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि इल्म का शोबा तो उनका है। अगर इल्म के मैदान में ये हालत है तो फिर तो जाहिर है हमारे हमारे जो एकेडमिक्स हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका मैदान बिगड़ा हुआ है, इल्म का मैदान बिगड़ा हुआ है, उनके तालिबे इल्म बिगड़े हुए हैं, इसका मतलब है there is something seriously wrong with our education system as well, जो inquisitive लोग नहीं बना रहा, जो शुरू से रट्टा दे के 10-10 सवाल जो है उनको याद करके पास करने वाले ग्रेजुएट्स बना रहा है। तो इसका तो मतलब है कि हमें उसको सिस्टेमिक भी देखने की जरूरत है कि ये माहौल अगर ऐसा है तो जाहिर उसकी कोई वजह होगी ना। दुनिया में तो ऐसा नहीं है, दुनिया में हमसे ज्यादा लोग मेहनत करते हैं, उनको पर आवर अपनी वेज की ज्यादा फिक्र होती है। बर्तानिया में अपने $10 पर घंटे या 20-30-50 डॉलर पर घंटे की ज्यादा फिक्र होती है, लेकिन उसके बावजूद वो किताबें भी पढ़ते हैं, इन चीजों के लिए वक्त भी निकालते हैं, प्रोटेस्ट के लिए भी आते हैं। तो इसको भी हमें एनालाइज करने की जरूरत है, मेरे ख्याल में जिम्मेदारी हमारी और बढ़ जाती है, जो भी स्पेसेस अवेलेबल है।
जमीन साहब, मैं आपको मायूसी के आलम में नहीं छोड़ना चाहता, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक नेटवर्क है पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स का जो बहुत स्ट्रांग है और बहुत सक्सेसफुल है, और मेरा ख्याल वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। मैंने कुछ देर पहले एक आर्टिकल लिखा था इसी पे, वो इंटेलेक्चुअल ये है कि हमारा जो फंडामेंटलिस्ट मौलवी नेटवर्क है वो तो अपनी स्पेस संभाली बैठा है ना, और वो तो स्पेस बढ़ा रहा है अपनी, ठीक है ना जी,
बढ़ा रहा है,
तो हैं तो वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, अब हम उनका क्या करें बताइए।
मैं तो खैर पब्लिक तो वो जरूर है और बहुत ज्यादा पब्लिक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स हरगिज नहीं है, क्योंकि वो बहुत तंग नजर हैं और उनकी उनकी जो है वो इलिबरल हैं, और मजहब के बारे में भी जो उनकी सोच है वो बहुत तंग है, वो गुफ्तगू पर मबनी नहीं है।
आपकी बात बहुत ज्यादा, बट द पॉइंट इज कि हमने देखा है कि सोसाइटीज या इवोल्यूशन जो है डजंट केयर अबाउट whether things go wrong or right. अमरीका में ही देख लें क्या हो रहा है, ठीक है, ब्रेक्सिट को देखें क्या हो रहा है, तो सोसाइटी साउथवर्ड भी जा सकती है क्या, नॉर्थ ना जाए, अगर के आपने तरक्की की तरफ नहीं चलना तो जवाल भी आ सकता है, और ये कई हमने देखा कई जगह हुआ ऐसे। तो अगर हमने अच्छे पब्लिक इंटेलेक्चुअल ना बनाए, अगर हम आगे की तरफ को नहीं जाना चाहते तो फिर पीछे की तरफ को जाएंगे कि नहीं, क्या ये सही असेसमेंट है कि नहीं?
बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं तो यही अर्ज कर रहा था कि जमहूरियत में इस वक्त तो मुझे एक एक रिसेशन नजर आ रहा है, जमहूरियत पीछे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और ये कोई खुद ब खुद माशरे का कोई ऑटोमेटिक खुद ब खुद इर्तका नहीं होता, टेक्नोलॉजी इर्तका करती है लेकिन माशरा माशरती इकदार इर्तका नहीं करती है, उसको तो आपने खुद ब खुद एक कोशिश के जरिए उसको डेवलप करना है, आगे लेकर जाना है, बेहतर करना है, और अगर जिद्दोजहद आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल उस पर रिसेशन आ सकती है। इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत को इसी तरह के खतरात हैं और पाकिस्तान के माशरे को भी खतरात हैं, और हमने देखा पिछले 30-40 साल में पाकिस्तानी माशरा किस तरह से कितनी मुसीबतों और मसाइल का शिकार हुआ, कितना इलिबरल हो गया, कितना तंग नजर हो गया, और किस तरह हम माशरा पहले से ज्यादा खराब हुआ।
अच्छा,
तो
ज़ैलम साहब,
नहीं करेंगे तो बेहतर नहीं होगा।
इन क्लोजिंग आपसे दो और सवाल पूछ लूं, एक तो मुझे बताइए, इलेक्शन आ रही है, ये पॉलिटिकल मेस मचा हुआ है, ठीक है जी, मुझे लगता नहीं कि सारे इदारे आपस में लड़ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये बच्चों का खेल बन गया, ये सारे छोटे बच्चे हैं जिनको सिर्फ शौक है शो मारने का, प्रोटोकॉल का, और ये इनमें किसी में दानाई और स्टेट्समैनशिप नहीं है। मुझे लग रहा है जो इस वक्त होना चाहिए कोई बर्टन रसल टाइप बंदा है, सबको बिठाए और कहे भाई बात करो, ये तुमने आपस में पावर शेयरिंग का माहिदा करना है, जैसे 1215 में किंग जॉन ने कर लिया था अपने नोबल से, जैसे कि बड़ी दफ़ा दुनिया में हो चुका है, तो हमारे यहाँ तो ये नहीं हो रहा। अब आप मुझे ये इन क्लोजिंग एक दो सवाल जवाब दे दें कि इलेक्शन में आप क्या चाहेंगे कि ये किस किस्म का अपना एक किस्म का मुवक्कफ़ रखें, मैनिफेस्टोस बनाएं, ये करें ताकि इस मेस को हम आगे को ठीक करने को चलें। क्या दो तीन बातें ये जो सोचनी चाहिए इनको कि ये इलेक्शन में सामने रखें, उसका कोई नतीजा निकालें?
बिल्कुल दुरुस्त, मेरे ख्याल में दो ऐसी फॉल्ट लाइंस हैं जिन पर इस वक्त मसाइल बहुत ज़्यादा शदीद हैं और जिनको हल करने की फौरी तौर पर ज़रूरत है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पास ऐसे अफराद की बहुत कमी है जो ये किरदार अदा कर सकें। एक ही आदमी जो मेरी जहन में आता है और जो ये आवाज़ भी उठा रहा था और कोशिश भी कर रहा था, वो रज़ा रब्बानी साहब हैं, जिनके पास ऐसा वज़न भी था और इसी कोशिश में थे कि इस तरीके की गुफ्तगू शुरू की जाए अदारों के दरमियान में भी और पार्टियों के दरमियान में भी, और बदकिस्मती से खुद उनकी अपनी पार्टी ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया और उनको एक अहम पोजिशन से, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन जिसमें रहते हुए वो एक अच्छा किरदार अदा कर सकते थे, वहाँ से उनको हटा दिया। तो दो बातें जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक तो ये है کہ ہمارے مختلف اداروں میں یعنی منتخب اور غیر منتخب جو ریاست کے ادارے ہیں ان کے درمیان میں جو تناؤ ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. ان کو آپس میں بیٹھ کر نارمز طے کرنی چاہیے, اور اگر ان کے درمیان میں جو اختلافات ہیں دونوں کی باتوں میں کچھ وزن ہو سکتا ہے اس کو طے کر دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور جو دوسری بات ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے آپس کے جو اختلافات ہیں, یعنی پاور سٹرگل ظاہر ہے سیاسی جماعت کا مقصد ہی طاقت حاصل کرنا ہوتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اگر انہوں نے نارم سیٹ نہ کی تو یہ جو جوتوں والا معاملہ چل رہا ہے کہ جب مولویوں نے ان کو جوتے مارنے شروع کر دیے ہیں اور وہ خود ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں تو یہ معاملہ پاکستان کی جمہوریت کو بھی لے ڈوبے گا اور پاکستان کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. کیونکہ پاکستان دیکھیے دنیا میں دو طرح کے ملک سٹیبل ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو مکمل طور پہ اتھارٹیرین ہوتے ہیں شمالی کوریا جیسے چین جیسے, دوسرے وہ ملک سٹیبل ہوتے ہیں جو باقاعدہ طور پر جمہوریت ہوتے ہیں. پاکستان اتھارٹیرین ملک نہیں بن سکتا کیونکہ پاکستان کی وہ ہسٹری نہیں ہے. ہم نے اتھارٹیرین بننے کی بہت سی کوشش کی, وہ ہمیشہ اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہوا, وائلنس ہوا, تباہی ہوئی. پاکستان ایک جمہوری ملک کے طور پر ہی ایک سٹیبل ملک بن سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے, اور ہمیں جمہوریت کی طرف ہی جانا ہے اگر اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو. اور میرے خیال میں اس میں ضروری ہے نہ صرف ادارے آپس میں اس معاملات کو طے کریں بلکہ سیاسی جماعتیں آپس میں اکٹھی ہو کر نارمز طے کریں, اور جو نارمز طے ہوئی ہیں ان کو فالو کریں, ایک ڈیموکریٹک کنسنسس بنائیں اور پھر اس پر عمل کریں.
یعنی کہ ایک پاور لینے کی جو رولز ہیں ان کو تو طے کریں نا, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو کنٹی لگا کے پاور لینی ہے. ٹھیک ہے نا جی,
بالکل درست.
اب یہ جو طریقہ ہے کہ الیکشن کو تو میننگ فل بنائے نا, پھر ابھی جو انہوں نے ایک میرا خیال ہے بہت بڑی اپرچونیٹی مس کر دی ہے کہ سینسس آیا تھا, بجائے سیٹیں بڑھانے کی سیٹیں وہی رکھی ہیں. بھائی سیٹیں کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ ٹھیک ہے, مجھے تو شک ہے کہ ری ڈسٹرکٹنگ بھی نہیں اچھی ہوگی, تو ہماری ڈیموکریسی کیسے چلے گی اگر ہم اس چیزوں پہ بات ہی نہیں کریں گے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں میڈیا ان چیزوں پہ بات ہی نہیں کر رہا, نہ کوئی اور مفکر بات کر رہا ہے ان چیزوں پہ.
بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اگر الیکشن کے بارے میں شکوک و شبہات ہوئے تو اس کا مطلب ہے ہماری انسٹیبلٹی اسی طرح چلے گی, اس سے زیادہ بڑھ جائے گی. اور اگر سیاسی جماعتوں نے اپنے مخالفین کو اپنا ذاتی دشمن سمجھا اور ان کو لیجیٹیمیٹ ایک اپوننٹ نہ سمجھا تو یہی معاملہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. اگلے چند سال میں بہت زیادہ انسٹیبلٹی آ جائے گی, اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس وقت پاکستان کے معاشرے کو اور پاکستان کی معیشت کو جو خطرات ہیں اس میں اسٹیبلٹی کتنی اہم ہے, اور انسٹیبلٹی کے نتیجے میں ہم کتنے مواقع ضائع کر سکتے ہیں اور کتنا نقصان کر سکتے ہیں.
زغم صاحب, علی چیما نے اور اس کے ساتھیوں نے ایک ریسرچ کی ہے الیکشن پہ, آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جی تقریباً 40% ہماری سیٹیں ایسی ہیں جن پہ فیملیز بار بار الیکٹ ہوتی ہیں. اس کو برطانیہ میں 18ویں صدی میں روٹن برا کہتے تھے, تو ہمارے یہاں ابھی بھی آج کل بھی روٹن برا سے. نمبر دو, انہوں نے حساب لگایا کہ پاکستان میں کوئی 1200 فیملیز ہیں جو صرف الیکشن سے فائدہ اٹھاتی ہیں, باقی کسی کا کوئی اسکوپ نہیں. آپ آج الیکشن لڑنا چاہے آپ نہیں لڑ سکتے, میں لڑنا چاہوں نہیں لڑ سکتا, کوئی اچھا آدمی الیکشن میں آ نہیں سکتا. تو یہ تو پھر کوئی ڈیموکریسی نہ ہوئی جہاں کوئی اچھا آدمی آ نہیں سکتا. الیکشن کا تو مطلب یہ ہر بندہ کھڑا ہو سکے.
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, دیکھیں یہ تو تبھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم جمہوری نظام کو مضبوط کریں, اور عوام جب تک آرگنائز ہو کر ڈیمانڈ نہیں ڈالیں گے ان لوگوں پر اور سیاسی جماعتوں میں خود شامل نہیں ہوں گے اور سیاسی جماعتوں کو اون نہیں کریں گے تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ تو تمام معاملہ ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ سے ہی حل ہو سکتے ہیں نا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی ایک غیر جمہوری نظام آیا تو یہی 1200 فیملی اور سپر جاتے ہیں, 1200 کی بجائے وہ 100 بن جاتی ہیں, اور وہ یہی لوگ ہی مزید مضبوط ہوتے ہیں کہ پھر ٹریڈیشنل الیٹ پر زیادہ سے زیادہ ریلائی کیا جاتا ہے. اور آپ نے 40% کی بات کی, مجھے تو اس میں بھی ایک امید کی بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ 60% تو کم از کم پاکستان کی کانسٹیچوئنسیز ایسی ہیں جو خاندانی اثر سے آزاد ہیں. اگر آپ 20 سال پہلے دیکھتے یا 30 سال پہلے دیکھتے تو شاید آپ کو 70-80% کانسٹیچوئنسی ایسے نظر آتی جس میں کوئی عام آدمی منتخب نہ ہو سکتا, کیونکہ پاکستان کی سیاست مکمل طور پر جو پہلی ایک دو دہائیاں ہیں انہی خاندانی سیاست دانوں کے اثر میں تھی. تو لوگوں میں ایک ڈیمانڈ موجود بھی ہے, لوگ اس کو بدلنا بھی چاہتے ہیں, لوگ بدلتے بھی ہیں, لوگ برج بھی الٹاتے ہیں, لیکن ہم نے جو سٹرکچرز میں تبدیلی کرنی ہے, جو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا ہے, جو ادارے بنانے ہیں جمہوری بھی اور غیر منتخب ادارے بھی جو ان کو مضبوط کرنے ہیں. اور دیکھیں جب تک स्टेट के अदारे रिस्पॉन्सिव ना हो तो अवाम को फिर ट्रेडिशनल एलीट के पास ही जाना पड़ता है। अगर थाना करप्ट हो तो लोगों के पास कोई तरीका ही नहीं बचता कि वो एमपीए के देरे के चक्कर लगाएं और उसके जरिए से अपनी लोगों को छुड़ाने की कोशिश करें या पकड़वाने की कोशिश करें या जमानत हासिल करने की कोशिश करें। तो हमें स्टेट बिल्डिंग भी करनी है, उसके बगैर भी जमहूरियत नहीं आ सकती, और जमहूरी इदारों को भी मजबूत करना है।
जनाब साहब थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। पर आखिरी दो सवाल, एक सवाल तो ये बताइए कि मेरी उम्मीद ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि काम रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्चर्स ये प्रोग्राम ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे या जो थिंकिंग लोग हैं, बताइए कि ये स्टूडेंट्स जर्नलिस्ट जो लिखते हैं लोग, उनको क्या आप एडवाइस करेंगे जो आपने बातें की हैं? फॉर एग्जांपल आपने दो तीन बड़ी मज़ेदार बातें की, एक सिंबॉलिक कैपिटल, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, एक द रोल ऑफ आइडियाज़, एक द रोल ऑफ रिफॉर्म। इन चीज़ों पे हमारे जो मुफक्किर हैं, चाहे वो अखबारों में लिखने वाले हों, चाहे मीडिया पे हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, कोई किस तरह इन पे सोचें और किन खास टॉपिक्स पे रिसर्च करें?
देखिए हमारे यहाँ एक तो मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर आप उर्दू में पढ़ रहे हैं तो उर्दू में तो उस तरह की किताबें तर्जमा नहीं होती, दस्तयाब नहीं है। तो एक तो मेरी तमाम तालिब इल्मों से गुजारिश ये होगी कि वह अपनी अंग्रेज़ी बेहतर बनाएं और जो बैनुल अक़वामी काम हो रहा है, जो बुनियादी काम है, उसको पढ़ें। ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े नाम हैं और बड़ा बड़ा अच्छा काम मुसलसल आता है, जो क्लासिक्स की हैसियत चीज़ें रखती हैं उनको भी पढ़ें, जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको भी पढ़ें। और फिर आपने जिस पहले
और क्लासेस की अच्छी बात यह है कि वो अब सब मुफ्त मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक
मुफ्त में मिल जाती हैं। और आपने जो जो बात की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब वो अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाकर इन चीज़ों पर गुफ्तगू नहीं करेंगे तो उनको खुद को भी मोटिवेशन नहीं मिलेगी और लर्न करने का बेहतर मौका नहीं मिलेगा। वो ऐसे दोस्त बनाएं जो पढ़ने वाले हों या दोस्तों को पढ़ने की और इन चीज़ों की गुफ्तगू करने की आदत डालें। कबाइलियत में मत जाएं, पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज के वो जाले बनकर एक दूसरे से मत लड़ें, आइडियाज पर गुफ्तगू करें, पॉलिसीज पर गुफ्तगू करें, किताबें पढ़ें और अपना ग्रुप बनाकर इन चीज़ों पर गुफ्तगू करें। इख्तलाफ राय की भी हौसला पैदा करें, दूसरों को भी सुनें और अपनी भी राय दें, अपने नॉलेज के नेटवर्क्स बनाएं और इल्म और लोग।
हेलो हेलो
जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही
है? नहीं, वो लास्ट बात मिस हो गई, चलें फिर से करें।
जी
ये लास्ट बात आपने क्या कही थी ये जरा रिपीट कर दें।
हाँ, मैं लास्ट बात ये कह रहा था कि अब मैं पूरे सवाल का जवाब दे दूं या सिर्फ आखिरी
बात? बस वो आखिरी बात जो आप कर दें, मैं एडिट कर दूं।
जी एक यानी वो एक दूसरे के साथ ऐसे नेटवर्क्स बनाएं जिसमें इल्मी गुफ्तगू करें अपना वक्त ज़ाय करने की बजाय, और कबाइलियत का शिकार होकर सियासी कबाइलियत में रहकर सिर्फ अपने लीडरों और पार्टियों को डिफेंड ना करते रहें बल्कि उनकी पॉलिसियों पर एक क्रिटिकली देखें, पॉलिसियों की तारीफ भी करें, पॉलिसियों की मुखालफत भी करें और इख्तलाफ राय का हौसला भी पैदा करें, एक दूसरे की बात सुने भी, एक दूसरे के साथ बात करें भी।
वेरी गुड, एक्सेलेंट। ज़रा हम सब आखिरी सवाल, मैं अक्सर अपने गेस्ट से पूछता हूँ कि जो लोग पढ़ना चाहें, कुछ देखना चाहें, कुछ सुनना चाहें, आप उनको रेकमेंड क्या करेंगे? व्हाट इज़ इट दैट यू थिंक दैट इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट कि वो पढ़ें, या आप मूवी शूवी जो भी कुछ आप रेकमेंड करना चाहते हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्या आप रेकमेंडेशन देंगे?
मैं उनको रेकमेंडेशन ये करता हूँ कि वो नॉलेज को अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाए। इल्म आजकल आपके पास आपके स्मार्टफोन पर आ गया है।
पर क्या एक चीज रेकमेंड करेंगे कि वो सुने, सुने देखें?
मैं उनको ये कहूंगा कि पॉडकास्ट का सॉफ्टवेयर अपने अपने जो उनका फोन है उस पर डाउनलोड करें, बेहतरीन जो पॉडकास्ट हैं दुनिया भर के और पाकिस्तान के उसको उसमें शामिल करें और जब भी मौका मिलता है उनको सुने।
आपका फेवरेट कौन सा पॉडकास्ट है?
मेरे बहुत से फेवरेट हैं,
एक बताइए।
मुझे बीबीसी 4 के जो पॉडकास्ट हैं बहुत सारे उसमें पसंद हैं, थिंकिंग अलाउड मुझे बहुत पसंद है और बहुत से हैं। अगर वो बीबीसी 4 को सर्च करेंगे तो उनको बहुत से ऐसे पॉडकास्ट नजर आएंगे जो इल्म पर मबनी होते हैं, उसमें उसमें स्टार्ट द वीक बहुत अच्छा है और बहुत से आइडियाज़।
रगम साहब आपने इतनी अच्छी बात की है, मैं हैरान हूँ। मैं अब यूनिवर्सिटी जाता हूँ लेक्चर का, तो मैं लोगों से पूछता हूँ कितने लोगों ने पॉडकास्ट का सुना हुआ है। मैं हैरान होता हूँ कि बच्चों को 2-3 को भी नहीं पता होता पॉडकास्ट का। मैं हैरान होता हूँ कि आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है और ये नॉलेज मुफ्त पड़ी है, आप इसको क्यों नहीं सुनते? पर आपने बिल्कुल ठीक बात कही।
और सिर्फ ये नॉलेज ही नहीं है, आप देखिए ये तो एक पॉडकास्ट की हम बात कर रहे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, LSE के भी हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज के भी हैं, उसको भी पॉडकास्ट में शामिल कर सकते हैं। अब तो MOOCs भी अवेलेबल हैं,
बिल्कुल,
वो स्मार्टफोन पर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज, लेक्चर्स और कोर्सेज मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। उन पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के इल्म तक वाबस्ता रहें। वो अगर दूर दराज इलाके में भी पाकिस्तान के बैठे हैं, आजकल हर तरह इंटरनेट आ गया है, तो वो दुनिया की किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं जो बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे उनको बताना चाहूंगा कि edx.org जी, जहाँ MOOCs की एक बहुत मशहूर साइट है, जहाँ मुफ्त में कोर्सेज अवेलेबल हैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के, वहां जरूर जाएं, वहां अपने आप को रजिस्टर करें, अपने पसंद के कोर्सेज वहां ढूंढें और उनको सुनें और उनको समझें, पढ़ें,
और बिल्कुल मुफ्त,
बिल्कुल मुफ्त में। जी
जगम साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। इंशाल्लाह आपको आइंदा भी तंग करता रहूंगा कभी कभी, तो लेट्स कीप दिस डायलॉग गोइंग।
मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे साथ इसमें शामिल करने का बहुत शुक्रिया, एंड लुक फॉरवर्ड टू जॉइनिंग।
सोच विचार के साथ, मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।